ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் சச்சிதானந்த ரூபாய விஸ்வோத்பத்யாதிஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வயம் நமஹ. யம் ப்ரவ்ரஜந்த மனுபேத்மபேத் க்ருத்யம் த்வயபாயன விரஹ காதர் ஆஜுவம் புத்ரேதி தன்மயதயாத்தர்வோபினேதோஸ் தம் சர்வபூதஹ்ருதயம் முனிமானதோஸ்மி. ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஸ்ரீகிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே, ஹே நாத நாராயண தேவ, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஹே நாத நாராயண தேவ, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஹே நாத நாராயண தேவ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே, ஹே நாத நாராயண தேவ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே, ஹே நாத நாராயண வாசுதேவ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயண வாசுதேவ. போலோ கிருஷ்ண கனையா லால் கீ ஜெய், சுவாமி பிரேம்புரிஜி மகாராஜ் கீ ஜெய். ஆப் லோக் மாதாஜி கே முகாரவிந்த் சே சுந்தர் பிரவச்சன் சுன் ரே தே. அச்சானக் சேவா ஆ கை தோ மேனே சோச்சா க்யா ஆப் லோகோ கே சாம்னே போலூ, ஓர் ஃபிர் அச்சானக் ஓர் பி சேவா 16 சே லேக்கர் 21 தக் மிலி ஹுவே ஹே. தோ மேனே சோச்சா குச் நா குச் ஏக் அபி சே பிராரம்ப கரோ. ஐசா மை கபி பாகவத் கதா தோ கர்த்தா நீ ஹூ, லேக்கின் சபி லோக் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கீ விசேஷதா காதே ஹே, காதே ஹே. தோ மை பி தோடா உன்கே ஊப்பர் போல்னே கா பிரயாஸ் கரோ. அப்னா ஸ்ரீமத் பாகவத் கே 12 ஸ்கந்த ஹே. तृतीय स्कंद से लेकर भागवत के 10 लक्षण कहे गए हुए हैं और आप लोग भागवत हमेशा सुनते रहते हैं. यहां तो भागवत मई है, यहां से लेकर वहां तक भागवत ही भागवत चलते हैं. तो कितने 10 लक्षण कहे हुए हैं. श्री सुकुवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम ऊषण मूतयः मनवांतरीशानुकता निरोधः मुक्तिराश्रयः। भागवत तृतीय स्कंद से लेकर आगे बारहवें स्कंद दस लक्षण से दस स्कंद माने जाते हैं। तो तृतीय स्कंद में सर्ग का व्याख्यान करते हैं। और तृतीय स्कंद में सर्ग क्या है? तो भगवान की एक सामान्य सृष्टि, सर्ग माने उत्पत्ति। सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य सृष्टि और एक विशेष सृष्टि होती है। जैसे पहला धागे से या सूत से एक धागा सामान्य बनाया जाता है और उस धागे से फिर बाद में विशेष विशेष वस्त्र बनाए जाते हैं। मतलब पहला कच्चा मटेरियल हो और उस कच्चे मटेरियल से आप लोग विशेष विशेष अलग अलग बनाते हैं। तो इस प्रकार तीसरे स्कंद में भगवान की सामान्य सृष्टि का सुंदर वर्णन किया और तृतीय स्कंद में ही सामान्य सृष्टि के साथ साथ ही मनु महाराज की जो तीन कन्याएं हैं, दो पुत्र हैं, तो उनमें देहूति मैया का चरित्र आया। तृतीय स्कंद में देहूति मैया का मंगलमय विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और दोनों के माध्यम से नौ कन्याएं हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा था, भगवान पहले ही शर्त रखी थी मनु महाराज के सामने, यदि आपकी पुत्री को ये मंजूर हो, मुझे एक संतान, मतलब एक संतान हो जाए कोई, तो उसके बाद में मैं मेरा संन्यास मार्ग स्वीकार करूंगा। और शत्रुपा और मनु महाराज के सामने देहूति ने मौन स्वीकार किया और उसके अनुसार ये विवाह हुआ, नौ कन्याएं हुई। जब जाने लगे तब देहूति मैया ने कहा, ये जो कन्याएं हैं इनकी व्यवस्था भी तो कोई करने वाला चाहिए, मैं अकेली कैसे करूं। और रह गई बात ये कन्याएं अपने घर जाती हैं, तो अपने घर में भी कोई होना चाहिए। और नारद जी ने बताया था देहूति मैया को भी और अपना भगवान ने स्वयं बताया था कर्दम ऋषि को कि आपके घर में मैं आने वाला हूं। तो भगवान आते हैं, कपिल भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए आशीर्वाद लेकर जंगल चले जाते हैं। और फिर बाद में माता ने सुंदर प्रश्न पूछा कपिल भगवान को कि हे भगवान, इस अनात्म संसार में न जाने कितनी योनियां मैं भटक रही हूं और एक तो मैं स्त्री जाति की हूं, मुझे समझ में भी नहीं आता है, आप मुझे सुंदर उपदेश दीजिएगा जिससे कि मैं मुक्त हूं। और इसका नाम है कपिल गीता, आप लोग हमेशा श्रवण करते हैं, बहुत सुंदर कपिल गीता है, कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसा आना जाना होता है। और कपिल भगवान ने वहां सांख्य शास्त्र का भी प्रतिपादन किया। कपिल भगवान का सांख्य शास्त्र थोड़ा सा भिन्न होता है और आज हम लोगों के सामने जो सांख्य कारिकादि है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब ये हो गया तृतीय स्कंद में देहूति मैया का थोड़ा सा वर्णन करके। चतुर्थ स्कंद में विषय है, मैं चतुर्थ स्कंद में जाना चाहता हूं सती मैया के चरित्र की तरफ, लेकिन वहां जाने के मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तावना पेश किया। चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय जी महाराज जी पूछते हैं, अपना बताते रहते हैं, विदुर जी महाराज सुन रहे हैं और मैत्रेय जी उत्तर दे रहे, दोनों का संवाद है। मैत्रेय उवाच, मनस्तु शत्रुपायां तिस्र कन्या जग्गिरे आकुतिर्देहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कहते हैं, हे विदुर जी, मनु महाराज के माध्यम से पूरी की पूरी सृष्टि हुई है और मनु महाराज के साथ साथ जो शत्रुपा ये उनकी अर्धांगिनी है, इन दोनों के माध्यम से तीसरा कन्या जग गिरे, तीन कन्याओं की उत्पत्ति हुई। और मैत्रेय जी महाराज नाम भी गिनाते हैं, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिश्च विश्रुता, विश्रुता मने प्रसिद्ध ये हैं तीन कन्या के। और देवहूति का पूर्व चरित्र आया है तीसरे स्कंद में। और यहां थोड़ा सा आकुति के बारे में बताते हैं। आकुतिम रुचये प्रादात भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। जो आकुति मैया है, प्रजापति ऋषि के साथ उनका विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह होते समय एक शर्त रख देते हैं मनु महाराज, शतरूपा के क्या बोलते हैं अनुमोदन, मैंने शतरूपा सहमत है उसके लिए। किसके लिए? पुत्रिका धर्म आश्रित्य, पुत्रिका धर्म उसको बोलते हैं जिसको, जिस पुत्री को दूसरे के साथ शादी करते हैं उस पुत्री का यदि पहला बेटा होता है तो अपने गोद ले लेने का, उसका नाम है पुत्रिका धर्म। और ये इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का है, अपने बेटी का पुत्री उन्होंने गोद में लिया। तो इसी प्रकार यहां पर भी मनु महाराज के लिए दो पुत्र है, प्रिव्रत और उत्तानपाद। दो पुत्र होते हुए बेटी का पुत्र गोद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु तभी भी उनकी इच्छा हो गई और अपनी पत्नी स्वीकृति दे देती है और उसके अनुसार रुचि प्रजापति से विवाह हो जाता है। और रुचि प्रजापति और आकुति के माध्यम से सुंदर संतति होती है दक्षिणा मैया और यज्ञ भगवान विष्णु की हो जाती है। और अभी यज्ञ भगवान विष्णु को पुत्रिका धर्म के नियम से तुरंत अपने यहां ले लेते हैं और आकुति प्रजापति के पास, माता पिता के पास दक्षिणा रहती हैं और बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। यहां थोड़ा कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, प्रजापति स भगवान रुचिस तस्याम अजिजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना ययोस्तयो पुरुष साक्षात विष्णुर यज्ञ स्वरूप धृक या स्त्री सा दक्षिणा भूते हे अंश भूतान अनपायिनी। भूति मनी लक्ष्मी, लक्ष्मी के लक्ष्मी ही दक्षिणा के रूप में आई हुई है और यज्ञ भगवान विष्णु उनके उदर में आए हुए। अभी दोनों में से पुत्री जो है माता पिता के पास रहती हैं और पुत्र को नाना के पास लाते हैं, नाना नानी के पास लाते हैं और बाद में इनकी शादी हो जाती है। कभी ऐसा प्रश्न हो जाता है कि भाई भाई और बहनें इनकी शादी कैसी होती है, इसके बारे में हम आप लोग मेरे से बहुत, मैं भागवत कथा नहीं करता हूं, अभी प्रारंभ है, अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा। तो हो सकता है ये सब दैवी पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनके लिए कोई अपना दोष भी नहीं है और जन्मते ही अलग किया गया है और ये दोनों के दोनों शक्ति और शक्तिमान हैं, इसलिए उनके पास हम लोगों के सामान्य नियमों का वाव होता नहीं, मतलब हमारे सामान्य नियम वहां चलते नहीं है। तो इस प्रकार आकुति की भी संतति हो जाती है, 12 पुत्र हो जाते हैं, उनका विस्तार हो जाता है। और देवहूति मैया की 9 कन्याएं और 9 ऋषियों को दी जाती है, उनका भी बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। और बाद में आ जाते हैं अपना प्रसूति मैया की, आकुति का तो आप लोगों ने सुना, देवहूति मैया का सुना, प्रसूति के लिए प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये में ही आत्मज तस्याम ससर्ज दुहित्री षोड़श अमल लोचना। मैत्री जी महाराज विदुर जी को कहते हैं, ए विदुर, अब आकुति का और देवहूति का जो वंश का लंबा चरित्र आपने सुना, वंश परंपरा मैंने आपको सुनाई, अब सुनाता हूं प्रसूति जो तीसरी कन्या है, मानवीम उसका नाम दिया मानवी प्रसूति। मानवी का अर्थ है मनु महाराज से उत्पन्न होने वाली मानवी, दक्ष से होने वाली दक्षायणी, पिता से होने वाला पुत्र को बोलते पार्थ। इस प्रकार प्रसूति मैया मनु महाराज से हुई है, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, मानवी। और ये दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ जो तीसरी कन्या है। और तस्याम ससर्ज दोहित्री, उस प्रसूति मैया से दोहित्री मानी कन्याएं उत्पन्न हो गई। कितने, षोडश मानी 16। और वे भी कैसे, अमल लोचन सुंदर आंख वाली नेत्र वाली 16 कन्याएं हो गई। और 16 त्रयोदश अदा धर्माय तथा एकम अग्नये विभु पितृभ्य एकाम युक्तिभ्यो भवा एकाम भव छिदः। त्रयोदश 13 एकटाई धर्म के लिए दी गई है और एक अग्नि के लिए दी गई है, एक पितरों के लिए दी गई है 15 हो गई और एक बच गई भवाय एकाम भवत छिदे, भवत छिदे भवाय एकाम ददात। भव मनी भव किसको बोलते हैं, संसार का नाम है भव। भवत छिदे मनी संसार का नाश करने वाले ऐसे कौन है, शिवजी है। भवो भवत भव्याय लीला तांडव पंडितः, मुक्तावली में मंगलाचरण किया है शिवजी के लिए, कृष्ण के लिए अलग किया है, शिवजी के लिए भी किया है। तो शिवजी के लिए मंगलाचरण करते हुए बोलते हैं भवा भवत भव्याय लीला तांडव पंडितः। लीला करने में, तांडव नृत्य करने में कैसे हैं, पंडित है, बहुत ही चतुर कुशल है, ऐसे शिवजी के लिए हम नमस्कार करते हैं। और वहां पर बोल दिया भव, भव मने ऐसा संसार है किंतु वहां भव मने शिवजी। भव भव तो भव्याय, ये शिवजी हमारे भव्य के लिए हो, हमारे विकास के लिए हो। इसी प्रकार यहां पर भी मैत्री जी महाराज बोलते हैं भवच्छिदे माने भव का नाश करने वाले, शब्द है भवच्छिद जैसे मरुत हलंत शब्द होता है, और चतुर्थी का एक वचन होता है भवच्छिदे माने भवच्छिदे चतुर्थी का है माने भव का नाश करने वालों के लिए, करने वालों के लिए कौन है, ऐसे शिवजी है। एक दिया गया और उसका नाम क्या है, सती, सती का चरित्र। अब यहां 13 का नाम भी गिना देते हैं जो धर्म को दिए गए हैं, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेदा तितिक्षा री मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। ये 13 इकट्ठा गिनाया, 13 ये नाम भी दे दिया। और उसमें मूर्ति नाम की जो कन्या है प्रसूति की, जो 13 कन्याओं में से जो धर्म को दी गई है, मूर्ति और धर्म के माध्यम से मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायण ऋषि, नव योगेश्वरों की कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है। नव योगेश्वरों की कथा सुनने वाले कौन है, हाँ जी, हाँ निमे राजा सुन रहे, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन ये निमे राजा और नव योगेश्वरों का जो संवाद नारद जी सुना रहे हैं वसुदेव जी को, हाँ वसुदेव जी नारद जी आते ही उनकी पूजा कर देते हैं और बोलते हैं, क्योंकि अब एकादश स्कंद का नाम ही है मुक्ति स्कंद, धीरे धीरे सबको मुक्त करना है, पिता को ज्ञान देना, कृष्ण भगवान देने पर वो लेगे भी नहीं, बोलते हैं ना कान घर में भी छेद सकते हैं लेकिन कहां लेके जाते हैं, सोनार के पास लेके, कहावत है ना, घर में छेद सकते हैं लेकिन ना छेदते हुए वहां लेके जाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी को ज्ञान देते हैं और देने पर भी वसुदेव जी को पछता भी नहीं है। तो यहां वसुदेव जी को ज्ञान देने के लिए सुंदर नारद जी ने अपना उपक्रम करते हैं, नौ योगेश्वरों की कथाओं का निमि महाराज सुन रहे हैं और नवयोगेश्वरों की कितनी बड़ी विशेषता है। बड़े लोग आने पर उठने की जरूरत नहीं होते, स्वयं उठा जाता है। सामने व्यक्ति तेजस्वी हो तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उनका दर्शन करो। यहां यज्ञ हो रहे हैं, दूर से पधार रहे हैं, ये तो अपना स्वाहा स्वाहा लगे हुए हैं। 16 ऋत्विज और 2 यजमान, 18 की ये नौका है ना, कर्मकांड की क्या है, नौका है। कितने लोगों की? 18 लोगों की नौका है। 2 यजमान मानी पति पत्नी यजमान होते और 16 ऋत्विज होते। ये अपने कर्म में लगे हुए हैं और ज्वालाएं ऊपर उठ रही है। ऋत्विजों को लगा कि ज्वालाएं इतनी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ विशेषता बताती है। तो मुड़ के देखा तो नव योगेश्वर आ रहे थे। मैंने उनका स्वागत किसने किया? अग्नि ने किया, निमित्त तो बाद में। उनको देखना पड़ा कि ज्वालाएं इतनी ऊपर उठ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण ढूंढने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़ा तो दिखाई दिए नव योगेश्वर, और तब ये इनका स्वागत करते हैं। और नव योगेश्वरों की कथा में से नर नारायण की कथा आप लोगों ने सुना है, तो यहां पर भी यही बोलते हैं कि मूर्ति जो प्रसूति की कन्या है 13 में से, उस मूर्ति के उदर में, मूर्ति और धर्म के उदर में नर नारायण ऋषि आए हुए हैं और इनकी कथा बहुत ही सुंदर है। आज भी बद्री का आश्रम में क्या करते हैं? तप करते हैं। और ये नर नारायण का अवतार किसके लिए है? किसको मारने के लिए? एक कोई राक्षस थे ना, कितने जन्म लेने के तप करने के बाद मारना, मुझे भी सोचा आप लोगों ने सुना होगा। एक ये तप करते थे, फिर मार देते थे, फिर वो तप करते थे, सहस्त्र अर्जुन तो नहीं है लेकिन सहस्त्र अर्जुन नहीं, लेकिन ये कथा मुझे याद नहीं आ रहा, देखिएगा हमेशा भागवत न करने के कारण। लेकिन वहां नर नारायण का अवतार किसके लिए मूल बताया गया कि एक के बाद में एक जगते थे, एक मार देता था उस एक को और फिर इनको तपश्चर्या के माध्यम से उठाते। मैं देखता हूं आए तो चलिए, मतलब क्योंकि उद्देश्य था उनका आने का, और मेरे ख्याल से यही कर्ण पहला था, वो ऐसा भी आया हुआ है। मैं पहला जो कर्ण था, क्या उसका जन्म पता नहीं लेकिन वो था, उसके लिए ही आया था। तो यहां चलिए नव योगेश्वरों की कथा में नर नारायण के। अब आगे बढ़ते हैं, प्रसूति मैया की एक कन्या है, सभी का वंश वर्णन आया। प्रसूति की जो 16 कन्या है, अग्नि को दी उनकी भी संतति हो गई है, पितरों को दी गई है उनकी भी संतति हुई है, बची है मैया कौन? सती मैया बची है। भवस्य पत्नी तो सती, भवम देवम अनुव्रता, आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेबे गुणशीलतः। मैंने देहोती की कन्याओं का विस्तार लंबा हुआ, आकुति के कन्याओं का भी विस्तार लंबा हुआ, प्रसूति का दूसरे कन्याओं का हुआ, लेकिन उन 16 कन्याओं में से एक कन्या बच गई जो सती माता है। सती के लिए बता रहे हैं, भवस्य पत्नी तो सती, भवम देवम अनुवर्ता, देव महादेव, महादेव को अनुवर्तन करने वाली, शिवजी की बहुत सेवा करने वाली सती मैया थी, किंतु आत्मना सदृशम गुणशीलता पुत्रम न लेवे, अपने गुणशील के अनुसार, दोनों के स्वभाव के अनुसार, दोनों कौन? शिवजी और सती माता के अनुसार पुत्र प्राप्ति हुई नहीं है। क्यों नहीं हुए हैं? तो बोलते हैं पितर या प्रतिरूपे स्वे भवाय अनागसे रुषा अप्रौढ़ एव आत्मना आत्मानम अजात योग संयुता। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को बोलते हैं, हे विदुर जी, क्योंकि पितरी अप्रतिरूपे, पितरी सप्तमी रूप है,
पितरी अप्रतिरूपे माने पिता अनुकूल नहीं होने के कारण रामे वने गते दशरथः पंचत्वं गता। रामे वने गते दशरथः पंचत्वं गता माने राम वन जाने पर दशरथ जी पंचत्व में लीन है। मैंने सप्तमी का प्रयोग मैं बता रहा हूं। रामे वने गते मतलब राम वन जाने पर, और सीधा सीधा सप्तमी का अर्थ है मैं और पर होता है कि नहीं, ऑन और इन सप्तमी का अर्थ, लेकिन यहां बाद में होने पर आता है। इसलिए पितरी प्रतिरूपे माने अपने पिता के द्वेष के कारण, अनुकूल न होने के कारण अपने शिवजी का आराध्य का उन्होंने अपराध करने के कारण अप्रौढ़ा एव माने युवा अवस्था में बहुत प्रौढ़ और अप्रौढ़ माने ज्यादा प्रौढ़ नहीं हुई थी, माने अभी अभी ये देवताओं का समय है, हम लोगों का समय नहीं है, तो उनका बहुत काल होता है, तो बोलते अभी तरुणी थी, युवती थी। ऐसी अवस्था में ही अपने शरीर को पिता के यज्ञ में स्वाहा कर दिया, ये मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को कहा। अब विदुर जी प्रश्न पूछेंगे द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में। विदुर उवाच भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वत्सल विद्वेषम अकरोत् कस्माद् अनादृत्य आत्मजाम सतीम। प्रश्न करते विदुर जी भवे शीलवताम श्रेष्ठे, भवे मने शिवजी, शीलवताम श्रेष्ठ जितने शीलवान हैं उन सब में शिवजी कैसे हैं, श्रेष्ठ है, और दक्षः भी कैसा है, धुवित्री वत्सलः